एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद। मनुख दे अचेतन मन विच पूर्ण होण दी बड़ी प्रबल प्यास है। हर वक्त मनुख दे प्राणा विच ये ख्याल बनिया रहिंदा है, मैं अधूरा मैं अधूरा, मैं इस कम विच अधूरा, मैं उस माहौल विच अधूरा। पूर्ण होण दी प्यास हर पल और हर दिन मनुख दे अंदर उजागर होंदी रहिंदी है। दरअसल असी देखते हैं कि जो चीज़ां जो वस्तुआं या जो हस्तियां सानू प्रभावित कर दियां वो पूर्ण होंदियां, अधूरी चीज़ तो मनुख प्रभावित नहीं होंदा। अधूरी संगीत दी धुन चंगी नहीं लगती, अधूरी कविता काबले सुनीद नहीं है। अधूरा बनिया होया मकान जिस दियां दीवारां खड़ियां छत नहीं है वो काबले रिहायश नहीं है। जिथे अधूरा मकान अधूरी संगीत दी धुन अधूरी कविता अधूरा चित्र अधूरा घड़िया होया बुत नहीं चंगा लगता, उत्थे अधूरा मनुख भी नहीं चंगा लगता। मनुख दा संपूर्ण होना बड़ा लाजमी है। बदकिस्मती ये है कि जिस वक्त बंदा मर जांदा है ते लोकी कहंदे ने ये पूरा हो गया, ये जमिया अधूरा, ये जीविया अधूरा, ये मर के किस तरह पूरा होया। मरे हुए मनुख नूं ये कह देना ये पूरा हो गया है, अचेतन मन विच सुभाव के गल निकल आई है कि मनुख पूर्ण होण वास्ते ही आया है। ये गल वक्री है कि मरे हुए नूं असी कह देंदे हां पूरा होया है, जबकि मौत दे नाल कोई पूरा नहीं आउंदा। जो सही ढंग नाल जीविया है ते जीवन विच जो पूरा नहीं होया वो मर के कतई पूरा नहीं होता, वो अधूरा ही मरिया है, अधूरा ही जीवे। इतनी गल स्पष्ट है कि मनुख पूर्ण होण दी बड़ी प्रबल प्यास अपने अंदर रखता है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने जद मनुखता ते झात मारी तो की देखिया, मनुख अधूरा है और अधूरा है इस वास्ते दुखी है, बेचैन है, परेशान है। गुरु नानक दे ए बचन ता संसार प्रसिद्ध हो गए कि बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार। असी गौर नाल देखते हाँ निर्धन दा दुखी होना कुदरती गल है, पर धनवान भी दुखी है। निर्गुण दा दुखी होना सुभाविक है, पर बड़े तो बड़ा गुणवान भी दुखी है। बीमार ते दुखी है, तंदुरुस्त भी दुखी है। इत्थे जो कमजोर है, लागर है, वो दुखी होवे स्वभाविक है, पर इत्थे बड़े बड़े सताधारी और पहलवान बलवान भी दुखी ने। दुख समगर है, दुख ने मनुख नूं चारों पासे तो घेरिया होया है और दुख दी लपेट विच मनुख रोज बरोज कसदा ही जा रहा है, होर बनीजदा जा रहा है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान कि दुख दा जन्म अधूरेपण तो है, सुख ते आनंद दा जन्म पूर्णता तो है। मनुख अधूरा है इस वास्ते दुखी है। तो मेरे पातशाह ने पूर्ण मनुख दी कल्पना की थी, मनुख नूं पूर्ण करना है, मनुख नूं मुकम्मल करना है। जद कोई कवि किसी कविता नूं जन्म देंदा है तो कल्पना दी दुनिया विचों उसनूं लंघना पैंदा है। संगीत दी पहले धुन दी पहले संगीतकार कल्पना करता है, फिर उसनूं साकार रूप देंदा है। एक चित्रकार पहले तस्वीर नूं अपने ख्यालां विच लियांदा है, फिर उसनूं साकार रूप विच प्रगट करता है। तो पूर्ण रूप नूं पहले गुरु नानक देव जी महाराज कल्पना विच ले आए ने कि पूर्ण जो मनुख है वह किस तरह का होवे और उसनूं किस ढंग नाल बनाना है, ये मेरे पातशाह ने खाका चित्रिया पूर्ण मनुख का, पूर्ण इंसान का। और इतनी गल स्पष्ट है कि जिहड़ी भी चीज़ सानू बहुता प्रभावित करेगी वह पूर्ण होवेगी, अधूरी चीज़ प्रभावित नहीं करती। अधूरा तो कुछ भी नहीं चंगा लगता, संपूर्ण चंगा लगता है, पूर्ण चंगा लगता है। तो पूर्ण मनुख का खाका चित्रिया गुरु नानक ने, तो यह दुनिया का सब तो औखा कम है कि मनुख को पूर्ण किया जाए। किसी संगीत की धुन को पूर्ण कर लेना, कविता पूरी कर लेनी, किताब पूरी लिख लेनी, बुत पूर्ण रूप दे घड़ लेना, तस्वीर पूर्ण बना लेनी, इतनी औखी गल नहीं जितना कि जीवदे जागदे मनुख को पूर्ण करना। क्योंकि मनुख इनकारी भी हो सकता है। किसी बुत को घड़ना हो तां पत्थर इनकार नहीं करता कि मैनू घड़ो ना, वो बिल्कुल इनकारी नहीं होता। लेकिन मनुख को घड़न लगी है तो उन्हूं आखिए तेनू सुंदर बुत की शकल देनी है, तेनू सुंदर मुजस्मा बनाना है, तेरे विच कुछ फालतू टुकड़ियां नू तराश के अलग करना है, तो मनुख इनकारी भी हो सकता है। इस वास्ते मनुख नू घड़ना, मनुख नू पूर्ण करना बहुत कठिन है, बहुत औखा है। मनुख नू पूर्ण करन लग्या गुरु नानक नू 250 साल लगे। इस वास्ते गुरु नानक नू 10 जामे धारण करने पे, 10 शरीर धारण करने पे। पहले जामे विच गुरु नानक ने कल्पना ही की थी पूर्ण मनुख दी, ते उस दा खाका चित्रिया। बाकी दे 9 गुरुआं ने उस खाके विच रंग भरे। संसार विच असीं ऐसियां अणगिणत किताबां देखदे हां जिसनू एक लेखक ने नहीं लिखिया, 2-3 लेखकां ने मिल के लिखिया। कई ऐसियां संगीत दीआं धुनां ने जिसनू एक संगीतकार ने तैयार नहीं किया, 2-3 ने मिल के तैयार किया होंदा। इसी तरीके नाल अणगिणत तस्वीरां ने जिसनू एक चित्रकार ने नहीं बनाया, कईआं ने मिल के बनाया। गुरु नानक ने जिस पूर्ण मनुख की कल्पना की सी, जिस दा खाका चित्रिया सी, इसनू 10 जामिया दे संपूर्ण किया, मुकम्मल किया। जो पूर्ण मनुख की कल्पना ते खाका चित्रिया गुरु नानक ने, उस पूर्ण मनुख का नाम रखिया सिख। ये सिख है। सिख का मतलब है मैं सीखण नू तैयार हाँ, मैं सीखना चाहना और मैं कुछ भी नहीं जानता। सिखी भाव उस दे अंदर पैदा होवेगा जो अंदरों कबूल कर लवे मैं कुछ भी नहीं जानता, मैनू कोई भी बोध नहीं। और इतना भाव जब पैदा होवेगा वो सीखण नू राजी हो जाएगा, तो जब सीखण नू राजी होवेगा तो सिखी जज्बात उस दे अंदरों फुट पैणगे। गुरु नानक ने इस तरह के पूर्ण मनुख की कल्पना की थी। साहिब गुरु अंगद देव जी महाराज ने उस खाके विच जिहड़ा रंग भरिया है, वह इतिहास नू पढ़न तो बाद जो विचार सामने आईए, हुक्म मनन दा जो रंग है ये गुरु अंगद देव जी महाराज ने भरिया। हुक्म मनना कहिंदे जिस तरह मनुख दे अंदर भोजन की भुख है, औलाद की भुख है, धन की भुख है, हुक्म करन की भी भुख है। जिस तरह भोजन वक्त सिर ना मिले तो भुख तो बंदा दुखी होंदा है। कोई हुक्म ना मन्ने, इन अगला इनकारी हो जाए तो भी बंदे नू बड़ी चोट पहुँचती है, बड़ा दुखी होंदा है। मनुख की हमेशा कोशिश रही है कि सारा संसार मेरा हुक्म मन्ने, पर जे इतना समर्थ ना हो सके, इतना महान ना हो सके, तो फिर सोचता है कोई गल नहीं, कम से कम समुच्चा मुलक ते मेरा हुक्म मन्ने। पर मुलक दे बंदे भी बागी होवन, हुक्म मनन नू तैयार ना होवन, ते इस दी ताकत भी बहुत ज्यादा ना होवे, फिर अपने आप नू तसल्ली देंदा है कोई गल नहीं, जिस शहर विच मैं रहना कम से कम समुचे शहर वासी ता मेरा हुक्म मनन। इस वास्ते असी देखदे आ कोई मुल्कां दे चौधरी बन दिन, कोई शहरां दे चौधरी बन दिन, कोई पिंडां दे चौधरी बन दिन, कोई मोहल्लियां दे चौधरी बन दिन, मतलब इतना ही आउंदा है कि हुण मोहल्ले वाले कम से कम हुक्म मनन। पर मोहल्ले वाले भी इनकारी हो जान तां फिर बंदा सोचदा है कोई गल नहीं, हुण समुचे घर वालियां नूं मेरा हुक्म मनना ही चाहिए। पर जे किधरे घर वाले भी इनकारी हो जान तो मनोविज्ञानी ऐसा कह दें फिर मनुख का जोर है कि घरवाली नूं ते हुक्म हर हालत विच ही मनना चाहिए। रब की नेत वह भी किधरे ख्यालां नाल सहमत ना होवे ते हुक्म मनन नूं राजी ना होवे तां कहिंदे बंदे का सुभाव बड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਐਸਾ ਵੀ ਮਨਸਵਿਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ। ਦਰਅਸਲ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ 'ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਔਗਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਮਨਾਵਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਦ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਨ ਲਏ ਨੇ ਅਗਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਏ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਗਲਤ ਨੇ, ਇਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੋ ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਈ ਬੱਚਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਚੜ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਠਾਈ ਟਪਕੇਗੀ, ਆਪਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣੀ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਕਦੀ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਠਾਈ ਟਪਕੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਜੰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਿਠਾਈ ਕਿੱਥੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੋ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸ੍ਰੀ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆ ਤੂੰ ਚੜ ਜਾ, ਇਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਝਾੜ, ਮਿਠਾਈ ਟਪਕੇਗੀ, ਆਪਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਠਾਈ ਨਹੀਂ ਟਪਕਦੀ, ਔਰ ਦਰਖਤ ਜੰਡਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਆਖਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਭਜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਲਹਿਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾ ਤੂੰ ਇਸ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਚੜ ਜਾ। ਲਹਿਣਾ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਕਦੀ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਠਾਈ ਟਪਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਲੋਕ ਪਗਲਾ ਕਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਇਸ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਮਿਠਾਈ ਟਪਕੇ ਜਾਂ ਨਾ ਟਪਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ ਗਾਥਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਟਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਨੇ ਉਹ ਲੋਟਾ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਲੋਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਜੇ ਇਹ ਲੋਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਫਿਰ? ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਈਏ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਸਾਡੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਆਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਗੰਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਨੇ ਫਿਰ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਲੋਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ। ਤੋ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਓ, ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਲੋਟਾ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟਿਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ ਕੱਪੜੇ ਸਾਡੇ ਗੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਚਿੱਕੜ ਆਲੂਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਕੜ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਗੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੋ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਗੰਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਭੈਭੀਤ ਹੈ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਹਥੇਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਮ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਗੰਦਗੀ ਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਗੰਦੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਤੋ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਗਏ, ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਿੱਕੜ ਸੀ, ਆਪ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੋਟੇ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸਮ ਸਾਰਾ ਚਿੱਕੜ ਆਲੂਦ ਹੋ ਗਏ, ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਖਿਆ ਲੈਣਿਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਲੋਟਾ ਚਿੱਕੜ ਦੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਦੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਦੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘਾਸਣ 'ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਸਤਕ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਐਸਾ ਦੇਖਿਆ, ਵਾਕਈ ਦੁਨੀਆ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਿਬਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦਾ ਖਾਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚਿਤਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ 'ਚ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦਾ ਰੰਗ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦਾ ਖਾਕਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚਿਤਰਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਦ ਬਾਬਾ ਨੇ ਉਸ ਖਾਕੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਮਾਮ ਬੋਸੀਦਾ ਰਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ 'ਚ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਨੋਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਨੇ ਵਰਨ ਵੰਡ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ। ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨੇ। ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਕਰਕੇ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੌ ਰੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਲਾਈ। ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਾਤ ਕਾ ਗਰ ਨਾ ਕਰ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰਾ, ਇਸ ਗਰਵ 'ਤੇ ਉਪਜੇ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰਾ। ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਬਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਜ਼ਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਰਾਜ ਸੀ, ਜੋ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਆਵੇ ਉਹ ਪਰਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਵੇ। 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਪਰਦਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਝੱਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਸਾਧੂ ਦੇ ਸਹਿਜ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਝੱਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਗਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਤਰੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਅੱਧਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪਰਦਾ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਅਰਬ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਜ਼ਾਤ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਢਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੁਰਕੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਕੈਦ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਰਬ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੁਰਕੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਈਸਾਈ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਨਗਨਤਾ ਹੈ। ਪਰਦੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਰਹੋ ਰਹੋਰੀ ਬਹੁਰੀਆ ਘੂੰਘਟ ਜਿਨ ਕਾੜੇ ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਲਹੇ ਗੀਨਾ ਆਂਡੇ। ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਇਹ ਬਹੂ ਤੂੰ ਇਸ ਘੁੰਡ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਘੂੰਘਟ ਤੇਰੋ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਚੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਕੁਦੇ ਅਰਨਾਚੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਘੁੰਡ ਹੈ, ਹਯਾ ਦਾ ਘੁੰਡ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਘੁੰਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਘੁੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਘੁੰਡ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਹਯਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਤਰੀ ਕੋਈ ਸੰਪਦਾ ਨਹੀਂ, ਧਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਪੜਦਾ ਅਣਗਿਣਤ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਈਸਾਈ ਜਗਤ ਬਹੁਤ ਨੰਗਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੰਗਾ ਹੈ। ਅਰਬ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਨੰਗਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਨਗਨਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਟਪਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਆਪ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਰੰਨਾ ਹੋਈਆਂ ਬੋਧੀਆਂ ਪੁਰਖ ਹੋਏ ਸਿਆਦ, ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਸੁੱਚ ਭੰਨੀ, ਖਾਣਾ ਖਾਜ ਅਖਾਜ, ਸ਼ਰਮ ਗਈ ਘਰ ਆਪਣੇ ਪਤ ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਨਾਲ, ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਏਕ ਹੈ ਅਵਰ ਨ ਸੱਚਾ ਬਾਲ। ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਸ਼ਗਨ ਅਪਸ਼ਗਨ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ। ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੱਛ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਸ਼ਗਨੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਸ਼ਗਨੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਬਾਹਰ ਖੋਤਾ ਬੋਲ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬਦਸ਼ਗਨੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਸ਼ਗਨ ਅਪਸ਼ਗਨ ਤਿਸ ਕੋ ਲਗੇ ਜਿਸ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਸ਼ਗਨ ਅਪਸ਼ਗਨ ਦੀ ਮਨੋਤ ਉਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਿੰਤਨ ਨੇ, ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੋਸੀਦੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਬ ਆਪਨ ਆਪ ਉਰਧਾਰੇ ਤੋ ਸ਼ਗਨ ਅਪਸ਼ਗਨ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਸ਼ਗਨ ਅਪਸ਼ਗਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਵਕਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੋਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਕ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਥਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਹਨੂੰ ਭੂਤ ਚੰਬੜੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਚੰਬੜੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਰੋਚਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਤਬ ਉੱਤਰ ਕਹਿਓ, ਪ੍ਰੇਤ ਲਗਿਓ ਜੈ ਸਿੱਖ ਘੋ ਲਇਓ, ਸੋਨੇ ਪੜਤ ਹੋਤ ਜਪ ਰਸਨਾ, ਜਿਨਹੂੰ ਕੰਠ ਤਿੰਨ ਪਰ ਕਛ ਬਸਨਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਜਿਹਦੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਭੂਤ ਨੇ ਚੰਬੜਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਸਵੈਮ ਭੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਵੈਮ ਪ੍ਰੇਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੈ ਘਰ ਸਾਧ ਨ ਸੇਵੀਏ, ਹਰ ਕੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਘਰ ਮਰਹਟ ਸਾਰ ਕੇ ਭੂਤ ਬਸੇ ਤਿੰਨ ਮਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਚਿੰਤਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਸਦੇ ਕੰਠ ਦੇ 'ਚ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮਨੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ उस खाके विच केड़ा रंग भरिया है, जिस खाके का चित्रण किया सी गुरु नानक देव जी महाराज ने। धर्म मंदरां दी उसारी का जो जज्बा है, ये गुरु रामदास जी महाराज की देन है। सतगुरु का फरमान सी, ऐ सिख जिथे बैठ के तू परलोक सवारना है, प्रभु का चिंतन करना है, वह घर भी बहुत सुंदर होना चाहिए। और तू ऐसे घर भी तामीर कर जिन्हां घरां दे उत्ते दूसरे भी दावा कर सकन। जैसे कि असी देखते हैं महाराज ने धर्मशाला सरावां दी बकायदा बुनियाद रख के तामीर शुरू कराई, जिथे आम साधारण मनुख आराम नाल रह सकन, मुसाफर रह सकन, जो सांझा घर होवे किसी एक व्यक्ति का ना होवे। इस तरह के जज्बे साहिब गुरु रामदास जी महाराज की देन ने। और ये बरकत असी देखते हैं कि सिख का अपना घर भावें कच्चा होवे पर वो गुरु का घर संगे मरमर का वेखना चाहता है। उसके अपने घर दे भावें पित्तल भी ना होवे पर गुरु का कलश ते वो सोने का वेखना चाहता है। ये उसकी श्रद्धा है, ये उसकी भावना है। और ये जज्बा गुरु रामदास जी महाराज की देन है। जिस मनुख के अंदर धर्म मंदरों की उसारी का जज्बा खत्म हो जाए, समझ लेना चाहिए उस दे अंदर गुरु रामदास जी का रंग नहीं है। तो जो रसम वहम तो मात का पुजारी होवे, उस मनुख के अंदर गुरु अमरदास जी की छो नहीं है। तो जिस सिख के अंदर हुक्म मनन की भावना ही ना हो, समझ लेना चाहिए गुरु अंगद देव जी महाराज की विचारधारा उस दे अंदर नहीं वसी। जो खाका पूरन पुरख का गुरु नानक ने चित्रया है, पंजवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज ने उस खाके विच शांति का रंग भरिया। हर हालत विच ऐ सिख तू शांत रहना है। शांति की बकायदा एक कसवटी है। अगला सामने क्रोधी खड़ा होवे और उहदे बड़े तपे हुए शब्द निकल रहे हो ते फिर भी कोई शांत रह सकता है, तो समझ लेना चाहिए ये मनुख अंदरों शांत हो गया। जब मैनू कोई कहिंदा है कि फलाना मनुख ते बिल्कुल शांतमई है, फलाना बिल्कुल त्यागी है, तो कई दफा मैं नहीं मनता। कारण कि कसौटी है। जैसे एक माचिस की डब्बी नू मेरे सामने कोई लियावे ते आखे देखो ये ठंडी है, बिल्कुल ठंडी है, तपश तो रहत है, तो कहना पएगा बे एक तीली कढ़ के जरा रगड़ के वेख अग है कि नहीं। एक एक तीली विच अग है, रगड़न की देर है। मनुख दे अंदर बहुत अगन है, बड़ी अगन है। थोड़ा जिहा छेड़न की देर है, मनुख दे अंदरों क्रोध भी पैदा हो जाता है, लोभ भी पैदा हो जाता है, वाशना भी पैदा हो जाती है। जिवें माचिस की डब्बी विच गालबन 60-70 तीलियां ने, मनुख दे अंदर अणगिणत चिनगारियां ने, बहुत सारे भांबड़ ने। बस उकसाहट दे नाल ये अगन जिहड़ी है पैदा हो जाती है। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज कितने शांत ने कि वह तत्ती तवी ते बैठ के भी शांत ने। अक्सर मनुख ठंडे कमरियां च बैठ के भी गर्म हो जाता है, ठंडे पहाड़ां ते बैठ के भी क्रोधित हो जाता है, ठंडियां छावां थले बैठ के भी अंदर तृष्णा की अग और क्रोध के भांबड़ उसके अंदर बल उठते हैं। पर कोई तत्ती तवी ते बैठ के भी शांत रह सकता है, शीतल रह सकता है, ये गुरु अर्जन देव जी महाराज की महान खूबी है। शांति का रंग जिथे गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भरिया, इस शांति नूं कोई बुजदिली ना समझ लवे, कायरता ना समझ लवे, तां छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने क्रांति का रंग उस खाके विच भरिया। सिख का वीर रस होना भी बड़ा लाजमी, पर उसका वीर रस शांति दे चों पैदा होवे। जो वीर रस शांति दे चों जन्म नहीं लैंदा, उसनूं क्रोध कहिंदे ने, वह वीर रस नहीं है। क्रोधी मनुख हमला आवर होंदा है, पर जो वीर रस अपने अंदर रखता है वह धर्म का मुआफिज होंदा है, कौम का रखवाला होंदा है, देश का रखवाला होंदा है। इस वास्ते वह अपने वीर रस का इस्तेमाल करता है। दबस्ताने मजाहिब दे करता जनाब मोहसन फानी, जो एक उगे लेखक होए ने और इतिहासकार होए ने, वो गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज बारे लिखते हैं कि एक मुगल सिपा सालार ने यके बादीगरे गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ते पांच वार कीते तलवार दे। छेवें पातशाह ढाल नाल उस वार नू रोक दे रहे। वो वार करी गया ते सतगुर रोक दे रहे। आखिर म्यान दे चों तलवार कढ़ के एक वार कीता ते जबान चों मुखार बिंद चों ए पावन बचन उचारण कीते, चुना नमी जदन जदन ई अस्त। ए सिपा सालार तलवार इंज नहीं चलाई दी, इंज चलाई दी। मौसन फानी कहिंदा मैदान जंग दे च किसे दुश्मन नू तलवार चलाण दी जाच सिखाणी, ऐ गुरु हरगोबिंद साहब ये तेरे हिस्से आया है। तेनू दुश्मन ते भी तरस आ गया है कि उनू तलवार चलाण दी जाच नहीं आउंदी, इस वास्ते उसते हमला ना कीता जाए, उसका हमला बर्दाश्त कीता जाए। उस हमले नू रोकया ते है, पर आपने तलवार दा वार इस वास्ते ना कीता, तरस आ गया कि मैदाने जंग देश ते आ गया है पर इसनू तलवार चलाण दी जाच नहीं आउंदी। कोई मैदाने जंग देच भी रहम दिली प्रगट कर सकदा है, कोई मैदाने जंग देच दुश्मन नू भी तलवार चलाण दी जाच सिखा सकदा है। ए गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे हिस्से आया। क्रांति दा रंग, वीर रस दा रंग उस हाके देच गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने भरिया। जिस सिख दे अंदर स्वयमान अणख खुददारी ते वीर रस खत्म हो जाए, समझ लेना चाहिदा है उस सिख दे अंदर छेवें पातशाह दा रंग नहीं है। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज की जिहड़ी देन है उसनू ए गवाह बैठा है। सतवें गुरु नानक गुरु हर राय साहब जी ने उस खाके देच केड़ा रंग भरे है, इतिहास दा थोड़ा जिहा अध्ययन करिए तो गल एक स्पष्ट हो जाती है। गुरु हर राय साहब जी ने इस गल दे उत्ते बहुत जोर दिता कि सिख नुमाइशी ना बने, प्रदर्शनी ना करे। नुमाइश लफ्ज़ है फारसी का, इहदा मतलब है वो प्रगट करना जो कुछ के ए नहीं है। आलमां दा उंज भी कहना है कि अक्सर मनुख ऐसा करता है, जो कुछ ए नहीं है उसनू ए प्रगट करता है, तो जो कुछ ए है उस दे उत्ते पड़दा पाण दी कोशिश करता है। मनुख दी बहुत सारी शक्ति बहुत सारा समा इस गल दे च नष्ट हो जाता है कि जो कुछ ए है उन्हूं छुपाना चाहता है, उत्ते पड़दे पाना चाहता है, और जो कुछ ए नहीं है उसनू प्रगट करना चाहता है। गुरु हर राय साहब जी महाराज ने फरमान किया, जो कुछ तू है उसनू ही प्रगट कर, और जो कुछ तू नहीं है उसनू प्रगट ना कर। जो कुछ तू है उस दे उत्ते पड़दे ना पा, उन्हों छुपाने की कोशिश ना कर। तू नुमाइशी ना बना, तू अपने आप की प्रदर्शनी ना कर। नुमाइशी मनुख उदे हर कृत दे च नुमाइशी आउंदी है। उदा हासा दिखावेदा, उदा रोना भी दिखावेदा आउंदा, उदी चाल दे च दिखावा आउंदा, उदे पहराव दे च दिखावा आउंदा, उदे खाने दे च दिखावा, उदे पीने दे च दिखावा, ते कई दफा ये दिखावा इस हद तक वध जांदा है कि उदी बंदगी दे च भी दिखावा आ जांदा है, उदे हर कर्म दे च दिखावा ही दिखावा आ जांदा है। साहिब कहिंदे नहीं, यह नुमाइशी जिंदगी नहीं चाहीदी। भगत कबीर का एक बड़ा सुंदर वाक है कि नाकों काटी कानों काटी काट कूट के डारी, कहो कबीर संतन की बैरन तीन लोक की प्यारी। भगत कबीर कहते हैं ये जो माया है मैं इहदा नक कट दिता है, कन कट दिता है, पर सवाल यह पैदा होता है भगत जी तुसी गर्दन क्यों नहीं कटी? गर्दन कटनी सी और भोग पा देना सी, पर कबीर कहते हैं माया दी गर्दन है ही नहीं, मैं कट्टा किस तरह? उसका तो सिर्फ नक है, उसका तो सिर्फ कन है, मैं दोनों कन कट दिते ने, मैं उसकी नक कट दिती है। दरअसल जो रूप कबीर पेश पे करते हैं मायाधारी का सिर्फ नक ही आता है तो कन ही आते, भाव वो जो कम भी करता है नक रखण वास्ते करता है और कन्ना नाल फिर अपनी शोभा सुनता है। कबीर कहते हैं मैं जो कुछ भी करदा नक रखण वास्ते नहीं करदा और मैं कन्ना दे नाल अपनी शोभा भी नहीं सुनदा। नुमाइशी बंदे दी ये पहचान है, वो जो कुछ भी कम करना चाहता है बस नक रखना है। गुरु परमात्मा धर्म कर्म ये कोई मायने नहीं रखते, उसकी नक ही बहुत वड्डी है। वो हर काम दे च अपनी नक नू ही अगे रखना चाहता है और कहिंदा मेरी नक रह जानी चाहिए। धर्म रवे भावे ना रहे, सच्चाई रवे भावे ना रहे, गुरु की होंद रवे भावे ना रहे, पर मेरी नक रहनी चाहिए। तो जद नद रखण की कोशिश करता है तो कन्ना नाल फिर शोभा सुनन दी भी उस दे अंदर भुख आउंदी है। कबीर कहिंदे मैं कन्ना नाल हुण अपनी शोभा नहीं सुनदा ते मैं नक रखण वास्ते कम नहीं करदा, मैं ते सच्चाई नूं मुख रख के ही कर्म करदा, ईश्वर नूं मुख रख के ही कर्म करदा। गुरु हर राय साहब जी महाराज का यह कहना, ए सिख तू नक रखण वास्ते कम नहीं करना, तू सच नूं रखण वास्ते, सच्चाई नूं रखण वास्ते, धर्म नूं रखण वास्ते कर्म करना है और तू नुमाइशी ना बन। इस तरह की सादगी का जो रंग है, हकीकी जो रंग है, गुरु हर राय साहब जी महाराज ने उस खाके च भरिया। बाला प्रीतम बाल उम्र दे गुरु साहिब श्री गुरु हरकृष्ण जी महाराज अठवें गुरु नानक ने उस खाके विच केड़ा रंग भरिया, ये गल भी काबले सुनीद है। साढ़े देश के चंद आलमां का ऐसा कहना है कि बुजुर्गी जिहड़ी है ये 35 साल तो शुरू होंदी है। 35 साल तो उम्र जिसकी थले है, घट है, उहदे बोल विच बचका ना होवेगा, उहदे बोल सही नहीं होणगे, उहदी गल विच पुख्तगी नहीं होवेगी, उहदे बचना विच दूर दृष्टि नहीं होवेगी। इस वास्ते साढ़े देश का आलमां का प्राचीन समय तो यह नारा लिया है कि जिसनों समाज का मुखी बनाना है, धर्म का मुखी बनाना है, राजनीति का मुखी बनाना है, उसकी उम्र घट तो घट 35 साल होनी चाहिए या 35 साल तो वध होनी चाहिए। 35 साल तो बिल्कुल थले ना हो, क्योंकि बच्चा है, उसकी गल विच पुख्तगी नहीं होगी और वह दूरदृष्ट नहीं होगा। बुजुर्गी नूं उम्र दे नाल ये नापण का एक रिवाज चलिया। गुरु घर ने इस गल नूं नहीं मनिया कि शरीरक उम्र दे नाल ही अकल का संबंध है, इस गल नूं नहीं मने। ईरान दे एक प्रसिद्ध संत शेख सादी साहब भी करीबन करीबन गुरु घर नाल सहमत ने। आप दा कहना है, बजुर्गी बा अकल अस्त नके बा साल, तवंगरी बा दिल अस्त नके बा माल। वो कहिंदा है बुजुर्गी दा संबंध अकल नाल है, उम्र दे नाल नहीं। किसी हद तक अज साइंस भी सहमत हो गई है कि मनुख की शरीरक उम्र तो 80 साल की हो जाती है, लेकिन दिमागी उम्र 12 साल की, 13 साल की, 11 साल की, 10 साल की ही रह जाती है। दिमागी तौर पर मनुख पूर्ण तौर पर उन्नत नहीं होता, शरीरक तौर पर तो उन्नत हो गया, 60 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, पर दिमाग 13 साल पर ही रुक गया, 12 साल पर रुक गया, 11 साल पर रुक गया। इस वास्ते कई दफ़ा देखने दे चाहता है कि बुढ़े बंदे भी बच्चों वाली गल्लां करते हैं। तो इस कर्म का प्रतिकर्म भी हो सकता है, इसका उल्ट भी हो सकता है। लाजमी जे दिन है रात है, रात है तो दिन है। जे 80 साल के बुढ़े के अंदर बच्चों वाली अकल हो सकती है तो किसी बच्चे के अंदर बुजुर्गों वाली अकल भी हो सकती है, इस तो उल्ट भी ऐसा हो सकता है। जे बहुत सारे बुढ़े बच्चों वाली तबीयत दे मिलते हैं तो संसार के कुछ ऐसे बच्चे भी आते हैं जिन्हां की तबीयत बुजुर्गी होती है, जिन्हां की सोचनी बुजुर्गी होती है। ये गल तो स्पष्ट हो गई कि शरीरक उम्र के नाल नाल दिमागी उम्र भी पूर्ण तौर पर वध रही होवे ऐसा लाजमी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। पर हुण सानू पता किस तरह चलेगा कि यह बंदा बच्चा है तो यह बंदा बुजुर्ग है, क्योंकि उम्र करके तो साफ पता चल जाता है। उसकी वेशभूषा, उसका रंग रूप, नक्शो निगार दस दें दिन बई इन्नी उम्र का होगा। पर जे हुण उम्र करके नापना ही नहीं, शरीर करके नापना ही नहीं, अकल करके नापना है, तो फिर किस तरह पता चलेगा ये बुजुर्ग है तो ये बच्चा है। बच्चे की पहचान ये आती है कि उस दे अंदर खेडन की रुचि बड़ी प्रबल होती है, तो खेडन की रुचि करके वो खिडौने की मंग करता है, उन्हें खिडौने चाहिए। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ उसने खिडौनिया नाल खेडना है, उन्हें हर चीज़ नू खिडौना बनाना है, कीमती तो कीमती वस्तु भी बच्चों के सामने खिडौना है और वह कीमती चीज़ नाल भी खेडन लग पैणगे। जे घर दे च कोई खिडौना ना होवे तां मासूम बच्चा कई दफ़ा प्यो नू भी कह देंदा है, तू घोड़ा बन मैं तेरी पिठ ते बैठना है, तो प्यो भी खिडौना बन जाता है, माँ भी खिडौना बन जाती है, बच्चा ऐसा कर लैंदा है। ते जिस बच्चे दी दृष्टि च प्यो खिडाउणा है, मां खिडाउणा है, उन्हें गुरु नूं भी खिडाउणा समझना है, उसने परमात्मा नूं भी खिडाउणा समझना है। भगत कबीर दा ते ऐसा कहना है कि बहुत सारे लोग परमात्मा नूं खिडाउणा ही समझदे ने। माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जा। संसार दे इतिहास दे च अणगिणत ऐसे बुढ़े मिलते हैं जिन्हां दे अंदर बचपन है, पर कुछ ऐसे बच्चे भी होए ने जिन्हां दे अंदर बुजुर्गी कुट कुट के भरी हुई सी, जिन्हां दे अंदर दूर दृष्टि कुट कुट के भरी हुई सी। प्राचीन इतिहास पढ़िए तां ध्रुव ते प्रहलाद की उम्र कोई खास उम्र नहीं है। प्रहलाद 5 साल का है, ध्रुव 5 साल का है। 5 बरख को अनाथ ध्रुव बारिक, हर सिमरत अमर अटारे। शरीर करके ये बच्चे ने, पर अकल करके ये बुजुर्ग ने, महान ने। 80 साल का हरनाकश अपने बच्चे प्रहलाद नूं कहिंदा है भी तू रसना दे नाल ए जाप जप, जल हरनाकश थल हरनाकश। ते 5 साल दे प्रहलाद कहिंदे ने बापू की बच्चियां वाली गल करदे हो, जल है राम थल है राम। हुण 80 साल का ये बुढ़ा बच्चियां वाली गल करता है, ते 5 साल का जो बच्चा है ये बुजुर्गों वाली गल करता है। अक्सर ऐसा होता है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज तो पूछिए भई नाम किवें जपिए, बंदगी किवें करिए, तो बड़े सुंदर बोल दर्ज ने भगत कबीर दे, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। 80 साल दे बुढ़े परमात्मा दा नाम इंज जप जिवें 5 साल दे प्रहलाद ने जपया, जिवें 5 साल दे ध्रुव ने जपया। तो उम्र करके ये बिल्कुल बच्चे ने। संसार दे इतिहास दे कुछ बच्चे ऐसे ने जो पूर्ण भगत हुए ने। एक बच्चा ऐसा होया है जो पूर्ण सिख सी, पूर्ण। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज जंगल दे बैठे सन। इस बालक ने मिसे प्रशादे और लस्सी दा भरिया होया लोटा गुरु नानक दे अगों रखे। सतगुरु ने प्रशादे छक ले, लस्सी पी ली, भांडे वापस किते, आख्या बालक असी तृप्त हो गए, तू अपने भांडे चुक ले। ये बच्चा, ये मासूम बच्चा जिदी उम्र 7 साल सी, हाथ जोड़ के कहन लगा, बाबा भोजन छकण नाल शरीर तृप्त होंदा है, आत्मा किस तरह तृप्त होंदी है, मन नूं तृप्ति किस तरह नसीब आउंदी है। हैरान हो गए गुरु नानक देव जी, उस मासूम बालक दे सिर ते हथ फेरिया, आखिया उम्र ते तेरी बच्चियां वाली है पर गल बुढ़िया वाली करदा है। 7 साल दे इस बच्चे दा नां बाबा बुढ़ा पै गया। और ये गुरु नानक देव जी महाराज तो लैके गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज तक रहा, 6 पातशाहियां तक। हरिमंदर साहब का पहला हैड ग्रंथी बाबा बुढ़ा जी से। 5 पातशाहियां नू तिलक उसने अपनी हत्थी लाया। 7 साल की उम्र है तो गुरु नानक देव जी ने कह दिता, बाबा बुढ़ा तू तो बाबा बुढ़ा है, भावें तू बच्चा है पर तेरे अंदर बुजुर्गी छुपी हुई है। जे एक बच्चा बाबा बुढ़ा हो सकता है तो कई बुढ़े बाबे बच्चे भी हो सकते हैं, इस तो उल्ट भी हो सकते हैं। बेशुमार बुढ़े बच्चियां वालियां गल्लां करते हैं, उस तो पता चलता है कि इन्हों का बौद्धिक तौर पर विकास नहीं होया, शरीरक तौर पर विकास हो गया, बुद्धि का विकास नहीं होया। इस वास्ते बुद्धि विच बचकाना विचार अजे भी मौजूद ने। तो संसार के इतिहास में कुछ बच्चे ऐसे हुए ने जो पूर्ण भगत सन, कुछ बच्चे ऐसे ने पूर्ण सिख हुए ने, कुछ बच्चे ऐसे भी ने जो पूर्ण शहीद हुए ने। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे लाडले 9 साल दे ते 11 साल दे सरहंद दे दीवार दे चिणे गए और अपनी जान दे दित्ती, पर ईमान नहीं दिता, धर्म नहीं दिता, उम्र ते कुछ भी नहीं। बड़े बड़े वड्डे मनुख डोल जांदे ने, ये बालक नहीं डोले। तो कहना पेगा अकल इन्हां दी महान सी, सोचनी इन्हां दी महान सी। संसार दे इतिहास दे च 2 बच्चे होर भी होए ने, उन्हें मुहम्मद साहब दे दोहते हजरत अली दे पुत्र हसन ते हुसैन। ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਯਜ਼ੀਦ ਨੇ ਪਿਆਸੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੜਪਾ ਤੜਪਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੱਚੇ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ। ਮਾਸੂਮ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਸਨ, ਪਿਆਸ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈ। ਕੜਕ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਚ, ਇਰਾਕ ਦੀ ਧੁੱਪ, ਉਸ ਧੁੱਪ ਦੇ ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੂ ਅੱਗ ਵਰਸਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਝੁਲਸ ਕੇ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਚ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਪੂਰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਇਹ ਸਬੂਤ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਪੂਰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਨੇ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਖਲਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਭਗਤ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਖਲਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਆਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਔਰ ਇਸ ਖਲਾ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਚਾ ਭਗਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਗੁਰਿਆਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਗੁਰਿਆਈ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਰ ਕਿਤਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਕਿਤਨੀ ਉਜਵਲ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਬਲ ਕਿਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਛਾਪ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਭਜਨ ਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲੁੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲੁੱਕ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਣ, ਇਹ ਰੰਗ, ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜੋ ਖਾਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚਿਤਰਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਰੰਗ ਭਰਿਆ। ਆਪ ਕਿਤਨੇ ਤਿਆਗੀ ਨੇ, ਆਪ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਪਰ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਗੁਰਿਆਈ, ਜੋ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਾਈ ਤਖਤ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਤਿਆਗੀ, ਇਤਨੇ ਵਿਰਾਗੀ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਭੋਰੇ ਦੇ ਛੁਪੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸੀ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਝੂਠੇ ਗੁਰੂ ਝੂਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਤੇ ਟੇਕਿਆ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਦੀਪਕ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਠੰਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮਹਿਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੋਲ ਬੈਠੀਏ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਗਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਸੋਢੀ ਬੰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਲੋਕੀ ਤੇਗਾ ਕਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰਲਾ ਧੋਰੇ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਿਆਗੀ ਇਤਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਜਦ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਛੱਡੇ। ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਡੋਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਡੋਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਆਪਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਤਿਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇਣ। जिस सिख दे अंदर त्याग दी भावना ने, वैराग दी झलक ने, समझ लेना चाहिए है, उस सिख दे अंदर गुरु तेग बहादुर साहब जी का रंग नहीं है। त्याग ते मैराग दी छाप लाग के तस्वीर मुकम्मल हो गई, जिस दी कल्पना गुरु नानक ने की सी, जिसका खाका गुरु नानक ने चित्रिया। इतिहास का अध्ययन करिए तां गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कोई होर रंग नहीं भरिया। आम कहावत है कि वीर रस का रंग भरिया नहीं, वीर रस का रंग ते गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने भर ही दिता सी। दरअसल तस्वीर गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज तक मुकम्मल हो गई सी, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने उसनों फ्रेम किया। ये तस्वीर फटे ना, टुटे ना, मैली ना होवे, जाया ना होवे, इसनों फ्रेम करना बड़ा लाजमी सी, इसनों शीशे देच मड़ना बड़ा लाजमी सी। तो फ्रेम देच गालबन पंज चीज़ां दी लोड़ पैंदी, एक ते चौखटा, चार कणियां, चार लकड़ां दा चौखटा, ते एक शीशा। पंज चीज़ां दे नाल तस्वीर नूं फ्रेम कीता जांदा है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ये पंज रहतां जो दित्तियां उस तस्वीर नूं फ्रेम कर छड़िया, जड़ दिता। और जब तस्वीर इन्हां रहतां दे फ्रेम विच जड़ी गई तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने स्वयं सजदा किया, आपने खुद मत्था टेकिया, सिख दे अगों स्वयं सजदा किया, स्वयं मत्था टेकिया, आख्या तस्वीर मुकम्मल हो गई, पूर्ण हो गई। और इस तस्वीर नूं टंगिया आपने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के आधार से, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के आसरे से फरमान किया, ए सिख जे तू बाणी नाल जुड़िया रहेगा बाणे नाल भी जुड़िया रहेगा, जे तू अमृत वेले नाल जुड़िया रहा तो अमृत नाल भी जुड़िया रहेगा। ये मेरे पातशाह की महान देन, जिस दिन आप हजूर साहब विच ज्योति जोत समान लगे ने ता आले दुआले सिखा ने खड़े होके बिने की, पातशाह सानू किस दे लड़ला चले, साडा कौन मुहाफिस, असी किस दे नक्शे कदम ते चलांगे। तो साहब फरमान करन लगे, तुसी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज तो प्रेरणा लैनी, राजनीतिक तौर ते, समाजिक तौर ते, धार्मिक तौर ते थोड़ी रहबरी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज करनगे। तो सिखा ने बेनती की, पातशाह गुरु ग्रंथ साहब थोड़े विचार ने, थोड़ी जोत है, थोड़ा फिलसफा है, थोड़ा ज्ञान है, कदी साडा दिल करे थोड़ा तन वेखना है, थोड़ा शरीर वेखना है, फिर असी कित्थे जावांगे, किहड़े पासे जावांगे। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे उत्थे अगम्मी बचन, सिख सो रहत पंच जो मिल है, मम स्वरूप सो जानो भले, सिख पंचों में मेरो वासा, पूरन करो धरो जय आस। पंज रहतवानिए सिख जे किधरे मिल जान, जिन्हां दे तन दे उत्ते पंज ककार होवन, जिन्हां दे हिरदे विच पंज बाणियां दा पाठ होवे, जिन्हां दे कंठ विच मूल मंत्र वसे होवे, जिन्हां दी रसना दे उत्ते गुरु दा मंत्र होवे, ऐसे पंजां दे अगर दर्शन हो जान तां साहिब कहण लगे ये मेरे ही दर्शन होणगे। ऐ सिख निश्चय ही जान अज मैं ही तैनू मिलिया, अगर ऐसे दर्शन तैनू नसीब हो जान। सिख बड़े स्याणे सन, हाथ जोड़ के बेनती करन लगे, पातशाह किसी ऐसे शहर दे च, पिंड दे च, कस्बे च साडा रहना होवे ते पंजां दे दर्शन ना होवन ते थोड़ा तन देखे बिना, थोड़ा शरीर देखे बिना सानू चैन ना मिले, फिर असी की करिए। लंबी सोच तो बाद मेरे पातशाह कहन लगे, अच्छा कोई एक भी मिले जिहदे तन दे उत्ते पंज ककार होवन, जिहदी रसना दे उत्ते गुरु दा मंत्र होवे, जिहदे कंठ दे च मूल मंत्र होवे, जिहदे हिरदे दे च बाणी दा वास होवे, समझ लेना चाहीदा है अज मेरे ही दर्शन होए ने, अज मैं मिलिया। लेकिन सिख इस दे नाल भी तसली बख्श ना होए, हाथ जोड़ के बेनती करन लगे, पातशाह जे एक भी ना मिलिया ते फिर किसे ऐसे शहर विच, किसे ऐसे मुल्क विच साडा वासा होवे ते इस तरह दे एक दे भी दर्शन ना होवन फिर की करिए। तां गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कहा, ऐ सिख तैनू दूर जाण दी लोड़ नहीं, तैनूं भटकण दी लोड़ नहीं, तू अमृत वेले उठें, पंज बाणियां दा पाठ करें, गुरमंत्र दा जाप करें, मूल मंत्र दा जाप करें, तन दे उत्ते रहता सजावें, ਤੇ ਜਿਉਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੁਖੜਾ ਵੇਖੇਗਾ ਉਹ ਮੁਖੜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੁਖੜਾ ਵੇਖ ਲਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੂਰਤ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਮੀਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਾਵਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਬੁਨਿਆਦ ਬਿਨਾਂ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਕਾਨ ਬਿਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦਰਖਤ ਬਿਨਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਥ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਖਾਸ ਰੂਪ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਕਰੂੰ ਮੈਂ ਅਬ, ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅੰਗਦ ਕੋ ਕੀਨਿਓ, ਸੰਕਾਨਾ ਕੀਜੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਏ ਦੀਜੇ, ਅਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ ਜੈਸੇ ਤੁਮ ਲੀਨਿਓ। ਜਦ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਤਨੀ ਸਿਫਤ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ ਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੋ ਮੋਸੇ ਗਰੀਬ ਕਰੋੜ ਭਰੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸਜਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਧਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਧਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ਪੋਸ਼ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜਾ ਛੱਡਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਤੋ ਜਾਪਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯਾਮੇ ਰੰਚ ਨ ਮਿਥਿਆ ਬਾਕੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਖੀ। ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਹਾਂ। ਜੈਸੇ ਨਦੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਸਾਗਰ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਜਦ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਆਵੇ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਭੇਦ ਨਾ ਭਾਈ।